ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
कृष्ण श्रीमद्भागवत के पहले स्कंध के आठवें अध्याय में आने वाले कुंती महारानी की स्तुति की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है। अब हम पहुंचे हैं श्लोक संख्या 25 पर। इसके पहले कुंती महारानी वर्णन कर चुकी हैं कि कैसे उनके जीवन में शुरुआत से लेकर अब तक तरह तरह के भीषण कष्ट आए, संकट आए, और इन सब में भगवान श्री कृष्ण ने उनको और उनके बच्चों को अर्थात पांडवों को बचाया। और इन कष्टों का संक्षिप्त रूप में वर्णन करने के पश्चात अब कुंती महारानी इस आने वाले श्लोक के माध्यम से हम सबको एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दे रही हैं कि हमारे जीवन में जब संकट आएंगे, और जो कि आने ही हैं, तो हमें कैसे उनका सामना करना चाहिए, किस दृष्टि से हमें कष्ट, संकट, खतरे को देखना चाहिए। यह इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक में हमें ज्ञान मिलेगा। तो आइए इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। विपदः संतुता शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भवदर्शनम् विपदः सन्तु। श्रील प्रभुपाद द्वारा कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं भगवान कृष्ण से, मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां फिर आएं, जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु को नहीं देखना होगा। अनुवाद दोहराइएगा। मैं चाहती हूं कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक हैं जो बड़े दुष्ट हैं, पापी हैं, जिनको दुष्कृत्य न कहते हैं, और दूसरे हैं जो थोड़े पुण्यवान हैं, जिनको सुकृत्य न कहते हैं। कृति न मतलब जो कोई विशेष काम करता है, तो दुष्कृत्य न मतलब जो विशेष करके बुरे काम करता है, सुकृत्य न मतलब विशेष करके जो अच्छे काम करता है, पुण्य करता है। तो जो दुष्कृत्य है वो कभी भी भगवान के शरण में नहीं आते, लेकिन जो पुण्य आत्माएं हैं, कठिनाई के समय, संकट के समय, विपत्तियों के समय, वो भगवान के शरण में आते हैं। ये एक अंतर है असुर और सुर इन दोनों में, या दुष्कृत्य और सुकृत्यों में। जो भगवान के शरण में आते हैं उनके पास पुण्य की पूंजी है, ये हमें जानना है, नहीं तो भगवान के पास नहीं आते। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। ये चार तरह के लोग मेरे शरण में आते हैं या मेरे पास में आते हैं। एक है जो पीड़ित है, आर्तो। दूसरा है जो कोई भौतिक लाभ चाहता है, तीसरा जो जिज्ञासु है और चौथा जो ज्ञानी है। लेकिन जानने की बात यह है कि केवल अगर कोई पीड़ित हुआ, केवल अगर किसी को कोई भौतिक लाभ चाहिए, केवल अगर कोई जिज्ञासु हुआ तो वो कृष्ण के पास नहीं आएगा, जब तक कि वो पुण्यवान न हो। ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के पास नहीं जाते पीड़ित होने के बावजूद। अगर उनको कोई भौतिक इच्छा या कामना है, भगवान के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि पुण्य की पूंजी उतनी नहीं है उनकी। तो जो पुण्यात्माएं हैं केवल वही भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं। भगवान कृष्ण के शरण में जाने से भगवान का स्मरण होता है। भगवान का स्मरण करते रहने से हम मुक्ति के पथ में अग्रसर हो सकते हैं। तो अगर कठिनाई के समय, विपत्तियों के समय हम भगवान को याद कर सकें तो इसका मतलब है कि हम मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ेंगे। और इसका मतलब है कि अगर इस दृष्टि से हमने विपत्तियों को देखा तो फिर ये विपत्तियां हमारे लिए अच्छे हैं। जो चीज हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाती है, जो घटना, जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो वातावरण हमें भगवान श्री कृष्ण के और करीब ले जाता है, चाहे हमारे भौतिक द्वंद्वों की दृष्टि से देखकर हमें लगे कि ये बुरा है, ये अच्छा है, परंतु अगर ये हमें भगवान के करीब ले जाता हो तो वो अच्छा ही है। और इसी बात को यहां कुंती महारानी स्पष्ट रूप से कह रही हैं। ये भौतिक जगत की तुलना एक सागर से की गई है। बड़ा विशाल सागर है ये, जिसको मृत्यु सागर कहते हैं। और इस मृत्यु के सागर में सारे जो प्राणी पड़े हुए हैं उनको बारंबार मृत्यु का सामना करना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इन चार चीजों का सामना बारंबार लगातार हर बद्ध जीव को करना पड़ता है इस भौतिक जगत में। बहुत ही खतरनाक जगह है ये। और ये सागर इतना विशाल है कि इसको पार करना प्राय असंभव है। दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो माया का सागर है जो कि हमें भगवान श्री कृष्ण से अलग करता है, दूर रखता है, दुरत्यया, बहुत ही कठिन है, इसको पार करना प्राय असंभव है। लेकिन ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर बात कहते हैं, समाशितये पद पल्लव प्लवम महत्पुदम पुण्यशो मुरारे भवाम बुधिम वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम नतेशाम। इस सुंदर प्रार्थना में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, जिनका नाम मुरारी है, जिसने मुर राक्षस का, मुर नाम के असुर का वध किया था, और जिनका यश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और महत पदम, जिनकी वजह से ये सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है वो कल्याण से भर गया है, मंगल्य हो गया है, ये भगवान के चरण कमलों में अगर हमने आश्रय लिया, समाश्रित ये पद पल्लव, तो ये एक नौके के बराबर है। प्लवम, प्लव मतलब नौका, जो कि इस भवसागर को, इस मृत्यु सागर के को पार करने के लिए बड़ा उपयुक्त है। और जब हम इस सागर में और इस सागर में इस नौके के ऊपर बैठकर सवार हम प्रवास करते हैं तो हमारे लिए भवसागर बिल्कुल पार करने के लिए आसान बन जाता है। वत्स पदम, जैसे गाय के बछड़े के पैरों के तलवे में नीचे जितना जगह है और उस खड्डे में जितना पानी हो सकता है, तो उस छोटे से खड्डे को पार करना किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल कठिन नहीं होता, आसानी से व्यक्ति पार कर सकता है, बल्कि एक बच्चा भी पार कर सकता है, लांघ सकता है उसको, उस छोटे से खड्डे को। तो ये विशाल भवसागर जो है वो इतना छोटा हो जाता है। क्यों? जब व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरण में जाता है तो भव सागर उसके लिए पार करना बहुत ही आसान हो जाता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते, इसको तैरना बहुत आसान हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जो कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ चुका है। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ये एक नौके के बराबर है। यहां पर इस पृथ्वी लोक पे कई समुद्र हैं जिसमें बहुत पानी है और इस पानी में चलने वाले कई बड़े बड़े नौके भी होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सोचे कि मेरा नौका बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है और यहां कोई धोखा नहीं है, ये कभी डूब नहीं सकता, तो वो पूरी तरह से भ्रम में है। क्योंकि बाहर समुद्र में कभी भी किसी भी क्षण में धोखा आ सकता है, तूफान आ सकता है, ऊंची ऊंची लहरें आ सकती हैं, नीचे से भूकंप आ सकता है और किसी भी समय बड़े से बड़े जहाज को भी खतरा है, डूब सकता है। कई साल पहले पश्चिम देश में, पाश्चात्य देशों में एक बहुत बड़ा जहाज बना था जिसका नाम था टाइटैनिक। और इस जहाज के बारे में बताया गया था कि यह इतना मजबूत है कि यह कभी भी डूबेगा नहीं और इसके बारे में जगह जगह बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। और वो यूरोप से अमेरिका जा रहा था पहली सफर में और इतना इसका विज्ञापन हो गया था, सब जगह सब बड़े बड़े अमीर अमीर लोग इसमें सफर कर रहे थे, उनके लिए एक प्रेस्टीज का मामला बन गया था, सम्मान का मामला बन गया था कि हम टाइटैनिक के पहले सफर में हम यात्री थे, सारे बड़े बड़े लोग यूरोप अमेरिका के उसमें सफर कर रहे थे। और जब अटलांटिक महासागर में जाते जाते वो कनाडा के पास पहुंचे या यूरोप के उत्तरी भाग में पहुंचे तो वहां पर एक विशाल बर्फ का टुकड़ा था। और आप तो जानते हैं कि जो पृथ्वी के उत्तरी भाग में जो बर्फ होता है, हालांकि ऊपर पानी के ऊपर इसका थोड़ा ही भाग दिखाई पड़ता है लेकिन पानी के नीचे ये बहुत विशाल रहता है। तो ये टाइटैनिक जहाज ने इससे टक्कर मार दिया और टक्कर मार के ये डूब गया। और लोगों को विश्वास नहीं हुआ, जो इस जहाज के अंदर यात्री थे, जब कप्तान ने कहा कि अब हमारे कोई राह नहीं, हम डूब रहे हैं, बचाने की कोई, अपने आप को बचाओ, क्या बचाते, बर्फ के समान ठंडा जल और वो भी बीच समुद्र में, ऐसा जहाज जिसके बारे में सभी ने कहा था कि कभी डूब नहीं सकता, मनुष्य इतिहास में, मानव इतिहास में सबसे बेहतरीन ये नौका है, सारे तकनीकी ज्ञान से युक्त, लेकिन पहले ही सफर में डूब गया और हजारों की संख्या में बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग मर गए, उस ठंडे ठंडे पानी में डूब कर मर गए। उनके पैसे का कोई लाभ नहीं हुआ, उनके धन का, उनके संपत्ति का, उनके प्रतिष्ठा का कोई फायदा नहीं, सब के सब डूब गए, जहाज भी डूब गया। ये बहुत एक विश्व के इतिहास में, इस शतक में बहुत प्रसिद्ध घटना है। तो जब इस समुद्र में, जो कि छोटा समुद्र है, उसमें ऐसे बड़े बड़े जहाज भी आसानी से डूब सकते हैं, तो ये विशाल भवसागर की बात दूर है और हमारे पास जो ये छोटा सा नौका है ये भला कैसे पार कर पाएगा। कमल दल जल जीवन टलमल, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है इस भौतिक जगत में, तो इसलिए हमें जान लेना चाहिए कि यहां पर हर मोड़ पे खतरे हैं। इसलिए श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, कि हर पद में यहां विपद है, कह नहीं सकते अगला कदम हम रखते हैं क्या होगा। बंबई में हमने सुना कई साल पहले, या एक घटना याद है कि जो रास्ते के अंदर जो गटर होते हैं, जो उसका ढक्कन होता है, वो नगर पालिका के व्यक्ति ने उसको साफ करते करते खोल के रखा था, ढक्कन रखा नहीं था। एक व्यक्ति चल रहा था, अपने अपनी दुनिया में था, वो सीधे उस गटर में गिर गया, मर गया बेचारा। उसको कभी उसने सोचा भी नहीं मैं अगला कदम जब लूंगा उसके बाद नीचे गिर गया, खत्म, वो गटर के पानी में बेचारा मर गया डूबकर। तो ये है संसार, कब क्या होगा, किसको कैसे होगा, कुछ नहीं कह सकते। फिर भी लोग ऐसे बर्ताव करते हैं कि मानो बिंदास कुछ होने वाला नहीं है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय है तो इसमें सुख भला कहां से आ सकता है। यहां से हर पद पर जब दुख कष्ट विपद आने वाला है तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, इसको भली भांति जान लेना चाहिए। लेकिन जो अल्प बुद्धि के लोग हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वो लोग इस बात को जानते नहीं है या जानते हुए भी नहीं जानते। वो क्या करते हैं, सदैव इन विपत्तियों से बचने के लिए कोई न कोई तरकीब निकालने की कोशिश करते हैं, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे करेंगे तो ये कष्ट नहीं आएगा, वैसे करेंगे तो वो कष्ट नहीं आएगा। हमेशा दिन भर जन्म से मृत्यु तक केवल यही तीर आ रहे हैं, माया के संकट के तीर आ रहे हैं, बस केवल ये वो कवच लगाते रहना। ये कष्ट आए उससे बचो, वो कष्ट आए उससे बचो, शायद वो कष्ट आ सकता है उससे अपने आप को बचाओ। इसी में सारा चित्त उनका चले जाता है, दिन रात इसके पीछे ही मेहनत करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, केवल दुखों का निवारण करने के लिए जो हैं या जो शायद आ सकते हैं इसी के पीछे पड़े हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपना ज्यादा समय दुखों का निवारण करने के लिए समय बर्बाद नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि दुख आते ही रहेंगे, कितना भी हमने प्रयास किया, जब हम दुख के सागर में पड़े हुए हैं तो दुख तो आने ही हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति दुख से संकट से घबराते नहीं हैं। वो जानते हैं कि जो होना है वो होगा, जो आने वाला है वो आएगा, और हमसे जो जाने वाला है वो जाएगा, इसके बारे में विचलित नहीं होना है। मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है, इसलिए ज्यादा समय हमें भगवत प्राप्ति के लिए बिताना चाहिए और इन संसार के संकटों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो लोग केवल योजना बनाते रहते हैं दुखों का निवारण करने के लिए, उनको इस भौतिक जगत के परे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि ये भौतिक जगत जो है ये क्षणिक है, क्षणभंगुर है, और इस अशाश्वत जगत के परे एक और शाश्वत जगत है जो भगवान का धाम है। ऐसे जगत के बारे में उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, और अगर कोई उनको बताए भी कि ऐसी कोई जगत है जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तो विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं है उनको। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति सदैव भ्रम में रहते हैं। तो ये संसार में बारंबार जो विपत्तियां आती हैं उसके बारे में बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा परवाह नहीं करता, आने दो जाने दो, क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह से कि ये विपत्तियां हैं क्या। ये विपत्तियां तो केवल सपना है बस। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे सपने में कोई व्यक्ति देखता है कि शेर उसका पीछा कर रहा है और उसको खा रहा है, ये तो एक स्वप्न का दुख है। उसी प्रकार से ये जो भी विपत्तियां हम जिनका अनुभव हम कर रहे हैं ये भौतिक जगत में, ये सब हमारे शरीर के स्वप्न के की वजह से है। हम देह बुद्धि शारीरिक बुद्धि में हैं, हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, बल्कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। फिर भी शरीर से संबंधित वस्तुओं को हम सत्य मान रहे हैं और इसलिए बिना वजह के अपने ऊपर हम कष्ट ले रहे हैं जो कि स्वप्न के समान है। तो हमें इस अज्ञान के नींद से जागना होगा और जाकर भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग से संपर्क करके हमारे जीवन को सफल बनाना है। भगवान के धाम में आगे जाने के लिए हमें कोशिश करनी है। तो कठिनाइयां बंद नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि हम भगवान के धाम में जा रहे हैं तो बस अभी कठिनाइयां बंद होनी चाहिए, नहीं, अंत तक रहेंगी। जब तक हम भगवान के धाम में पहुंचेंगे नहीं तब तक यहां पर भौतिक जगत में कष्ट आते रहेंगे। इसलिए यहां पर इस श्लोक में कुंती महारानी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि ये जो विपत्तियां हैं हमारे लिए अच्छे हैं। अगर इन विपत्तियों के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और भी तीव्रता से कर पाए तो हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए कि विपत्तियों के समय कृष्ण का स्मरण करें। तो जब भक्तों के जीवन में विपत्तियां आती हैं तो उनकी भावना कैसी होनी चाहिए, क्या दृष्टि होनी चाहिए इन विपत्तियों के प्रति। ब्रह्मा जी जो हैं वो श्रीमद् भागवत में और एक सुंदर प्रार्थना करते हैं,
तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वा वपुर्भिर्विदधं नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो भी विपत्तियां मेरे जीवन में आ रही हैं वो केवल आपकी अनुकंपा है, आपकी कृपा है। मैं आपकी कृपा की याचना, कृपा की प्रतीक्षा करते रहूंगा। जब आप देना चाहें तब दीजिए, मैं केवल धीरज रख के प्रतीक्षा करता रहूंगा कि आज नहीं तो कल आपकी कृपा मेरे ऊपर आएगी। और जो संकट मेरे जीवन में आ रहे हैं वो तो आपकी कृपा है ही। अनुकंपा तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, कि मैं राह देख रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ये संकट भगवान की कृपा क्यों है? पहली बात, ब्रह्मा जी कहते हैं कृतम विपाकम आत्मकृतम, कि ये जो मैंने किए हुए पापों का फल है, इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। जो भी संकट मेरे जीवन में आ रहे हैं वो क्या है? केवल मैंने जो पाप किए उन पापों का फल मुझको मिल रहा है, किसी और को मैं दोष नहीं दे सकता हूं। इसलिए मेरे किए हुए कर्मों का फल है, मुझे किसी को दोष नहीं देना है। और वैसे मैं इतना पापी हूं कि इन पापों का फल मुझे मिलना था इससे कहीं ज्यादा, लेकिन आपने कृपा करके मुझे जो इतना संकट समुद्र के समान संकट मिलना था, आपने मुझे बूंद के बराबर ये कष्ट दे दिया। एक अदालत में अगर कोई व्यक्ति है जिसको कानून के हिसाब से दंड मिलना है, 1,00,000 रुपए का दंड, लेकिन न्यायाधीश सोचते हैं कि ठीक है इनको 1,00,000 का दंड नहीं, हालांकि ये दे सकते हैं, उनके पास इतना धन है, परंतु उनको केवल हम 10 रुपए दंड देंगे। तो ये है न्यायाधीश की कृपा उसके ऊपर, वो दे सकता है लेकिन फिर भी वो केवल 10 रुपए देते हैं, हालांकि उसको 1,00,000 रुपए देना चाहिए। ठीक उसी तरह से भक्त सोचता है मुझे अब कष्ट हुआ है या जो हो रहा है वो तो बहुत कम है, मुझे इससे 10,000 गुना ज्यादा दुख मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान आपने इतनी कृपा की मेरे ऊपर कि बहुत थोड़ा सा दुख मुझे दे दिया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सबसे बड़ा पापी भी क्यों न हो, उसने बहुत ही बुरे से बुरे काम क्यों न किए हो, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाता है, भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगता है, तो फिर उसके ऐसे बुरे से बुरे कार्यों का फल भी बहुत कम होकर इस व्यक्ति को मिल जाएगा। एक उदाहरण प्रभुपाद कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपने भाग्य में उसकी गर्दन कट जाना ये लिखा है किसी पूर्व पाप की वजह से, जब वो व्यक्ति भक्ति करेगा तो कुछ तो होना है, परंतु गर्दन कटने के बजाय उसकी उंगली पर छुरी की एक छोटा सा घाव लग जाता है। आना तो है, कुछ न कुछ कर्म का फल पूरी तरह से तो नष्ट नहीं होगा, थोड़ा कुछ तो आएगा, लेकिन जितना आना था उससे लाखों गुना कम हमें थोड़ा सा घाव मिल जाएगा। तो भक्त को जब ऐसे चाकू सब्जी काटते हुए किसी में कुछ उंगली कट जाती, याद रखना चाहिए वास्तव में गर्दन कट जाना चाहिए था, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, थोड़ा सा इतना ही हमको डेटॉल बैंडेड लगाने से वो मामला निपट गया। देखो भगवान कितने कृपालु हैं। किसी को एक्सीडेंट में कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई कुछ हड्डी टूट गई, तो समझना चाहिए कि और क्या होना चाहिए था, शरीर चूर चूर होना चाहिए था, लेकिन केवल भगवान ने फ्रैक्चर में ही मामला निपटा दिया। तो बड़ी कृपा है भगवान की। तो इस प्रकार से भक्त संकट को भगवान की कृपा देखता है, क्योंकि वो समझता है कि मुझे होना था इससे बहुत कुछ ज्यादा। और दूसरा कारण यह है कि भक्त संकट को भगवान की कृपा देखता है कि संकट के समय वो भगवान का और भी तीव्रता से स्मरण कर सकता है। भगवान के स्मरण करने के लिए एक संधि है, एक अच्छा अवसर है। अगर हरेक व्यक्ति संसार में सुखी रहता, अगर ये भवसागर नहीं रहता, मृत्यु सागर नहीं रहता, तो कोई भी भगवान के शरण में नहीं आता। दुख होते हैं संसार में, इसलिए लोग भगवान के पास आते हैं। इसलिए दुख के समय हमें अभ्यास करना चाहिए कैसे श्री कृष्ण का स्मरण करना है। तो भगवान जो है, भगवान जब संकट भेजते हैं भक्त के जीवन में, भक्त इन संकटों को स्वागत करता है, द्वंद्वों की दृष्टि से नहीं देखता कि ये अच्छा ये बुरा, ये ऐश्वर्य ये आनंद, ये आराम और ये दुर्घटना, ये संकट, ऐसा नहीं देखता। शास्त्र में बताया जाता है कि धर्म और अधर्म क्या है। धर्म भगवान का दिव्य शरीर का सामने वाला भाग है और अधर्म भगवान के पीछे वाला भाग है। लेकिन दोनों तो भगवान ही आगे हो या पीछे हो, भगवान के आगे या पीछे में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से भक्त कभी इन संसार के द्वंद्व के परिस्थितियों में कोई भेद नहीं करता कि ये सुख है ये दुख है। दुख भी आए तो दुख को भी वो कृष्ण ही समझता है कि अब मेरे सामने श्री कृष्ण दुख या संकट या खतरा के रूप में प्रकट हुए हैं। तो अगर हमारा व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि ये कृष्ण है। ये नुकसान नहीं, हाय हाय करने की बात नहीं है, ये हरे कृष्ण करने की बात है। तो ऐसी अगर हमारी दृष्टि रहेगी तो हर अवस्था में हम सुखी रह पाएंगे। इसलिए भक्त जो होता है दुनिया के द्वंद्वों के बीच में कभी विचलित नहीं होता, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहता है और वो सोचता है कि भगवान मेरे सामने मुझे दर्शन दे रहे हैं संकट के रूप में। भगवान के अनेक रूप होते हैं, लेकिन साधारणतः लोग जो भगवान के रूप जानते हैं वो क्या है, नरसिम्हदेव, राम, कृष्ण, बलराम, ये विभिन्न रूप, भगवान के अर्चा विग्रह का रूप, भगवान का नाम, ये सब भगवान के अलग अलग रूप हैं, अवश्य हैं। लेकिन साधारणतः भक्त भी इस जानते नहीं है कि और एक महत्वपूर्ण भगवान का रूप है, और वो क्या है, कष्ट विपत्ति, ये भी एक रूप है भगवान का। तो जिस प्रकार से हम भगवान के श्री विग्रह के सामने आते हैं और हाथ ऊपर करके बड़े खुशी से स्वागत करते हैं, हम खुशी से भगवान का दर्शन करते हैं, तो विपत्तियों का दर्शन भी हमें इसी तरह से करना चाहिए। नुकसान हो गया, ठीक है, हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भेजा हुआ है, कृष्ण ने हमारा सब कुछ छीन लिया। वैसे एक भक्त ने, दक्षिण भारत के भक्त ने हमें कहानी बताई एक आंध्र प्रदेश के भक्त के बारे में, जो भगवान राम के भक्त थे। तो उन्होंने एक बार भगवान श्री रामचंद्र के लिए, उनके विग्रह के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण बनाए, लेकिन ये जो पैसा उनको कहां से मिला, उनको जो मुसलमान सुल्तान था उसके धन से जो कर देना था मुसलमान सुल्तान को, उसको नहीं देकर यहां खर्च कर दिया। तो सुल्तान को जब पता चला तो उसने जेल में डाल दिया रामदास को, जो कि उनके मंत्री थे, और उनको पिटाई कर दी। जब पिटाई हो गई तो उस समय रामदास ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, देखो मैंने ये आपको आभूषण दिए, आपको, सीता देवी को, भरत को, और आप बड़े शान से खड़े हैं आभूषणों को, अच्छा आपको बड़ा आनंद लग रहा है आभूषणों को पहनते हुए, अच्छा लगता है आभूषणों को पहनते हुए, लेकिन ये आभूषण आए कहां से, क्या आपने पैसे दिए, क्या सीता देवी के पिता जनक महाराज ने पैसे दिए, क्या आपके पिता दशरथ महाराज मुझे पैसे भेजे, मैंने खर्च किए हैं, और इसके बजाय आप मुझे क्या दे रहे हैं, आप जेल भिजवा रहे हैं और मेरी पिटाई कर रहे हैं। तो प्रभु रामचंद्र फिर लक्ष्मण के साथ उस सुल्तान के पास गए और उन्होंने पैसे लौटा दिए। तो सुल्तान तुरंत आया इस मंत्री के पास कि हम आपको छोड़ रहे हैं जेल से, आपका पैसा आ गया, हमको मिल गया। अच्छा, मिल गया, कहां से, किसने दिया? हाँ, वो दो व्यक्ति आए थे, बड़े सुंदर थे और धनुष बाण लेकर वो आए, कहे कि हम रामदास की ओर से आए हैं, ये धन हम लौटा रहे हैं। तो वहां पर रामदास बेचारे बेहोश होकर गिर पड़े। वो सोचने लगे कि देखो, मैंने भगवान के लिए इतना कुछ किया और उनके लिए मैं जेल में गया, मेरी पिटाई हो गई, और फिर भगवान ने दर्शन किसको दिया? वो सुल्तान को दिया, हमको नहीं दिया। जब हम एमके हुबली में गए थे, ऐसी एक कहानी सुन रहे थे ना, यादव आर्य के बारे में, जो डाकू आक्रमण करने वाले थे, उनके सामने भगवान श्री रामचंद्र आए, नरसिंह देव आए, और वो भाग गए, उन्होंने डर गए, फिर आके क्षमा याचना करने लगे यादव आर्य से। वो कहने लगे, क्या बात है? कहने लगे, हमारी योजना थी कि हम आपके ऊपर डाका डालें और आपका सब कुछ चोरी कर लें, लेकिन हमारे सामने ये दो पुरुष आए धनुष बाण लेकर ऐसे, और एक आधा सिंह आधा नर का रूप धरे के लिए और एक व्यक्ति आए, इसलिए हम डर गए। तो फिर वो यादव आर्य सोचने लगे कि देखो, ये कितने भाग्यशाली हैं, हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने दर्शन उन डाकुओं को दिया, हमको नहीं दिया। फिर उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना व्यवसाय सब कुछ त्याग कर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग गए। तो हर दृष्टि से जानना है कि जो भी हमारे जीवन में होता है, खास करके भक्त के जीवन में होता है, वो व्यक्तिगत रूप से भगवान ही कर रहे हैं। जैसे रामदास बोल रहे थे भगवान के कि आपने ही सब मुझे ये किया, जेल में डाला है, आपने ही मेरी पिटाई की है। वो जानता है कि सब कुछ भगवान ही करते हैं, इसलिए संकट का स्वागत करते हैं जो उन्नत भक्त होते हैं, क्योंकि संकट या कष्ट विपत्ति ये भी भगवान का ही एक रूप होता है। इसलिए कुंती महारानी यहां पर प्रार्थना करती है, विपद संतु तह शाश्वत, विपद आने दीजिए, कितना आने दीजिए, शाश्वत, हमेशा सदैव आने आते रहिए, क्योंकि ऐसे अवस्था में तत्र तत्र भवतो दर्शनम यत् स्याद। क्योंकि जब संकट आते हैं, कष्ट विपत्तियां आती हैं हमारे जीवन में, तो हम आपका दर्शन करते हैं, हम संकट नहीं देखते, हम आपको देखते हैं, और आपका दर्शन करने से क्या होता है, अपुनः भवदर्शनम, भवदर्शनम, ये संसार को भव कहते हैं, जिसमें बार बार होना है हमको, क्या होना है, मर जाना है, जन्म लेना है, बीमार होना है, तो ये सब भव है, ये भव सागर। तो पुनः भव, भव दर्शन मतलब इस संसार में अंदर रहना, और भव पुनः भव दर्शन मतलब बार बार जन्म लेना, और अपुनर्भव दर्शन मतलब फिर से जन्म नहीं लेना, जन्म मृत्यु के चक्कर से पूरी तरह से छूट जाना। तो कुंती महारानी कहती हैं कि मैं विपत्तियों का स्वागत करती हूं, क्योंकि जब विपत्तियां मेरे जीवन में आते हैं तो मैं आपको देखती हूं और आपका दर्शन करती हूं, आपका स्मरण करती हूं, इसलिए अब मेरे लिए पुनः भव दर्शन नहीं है, पुनर्जन्म मृत्यु नहीं है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस जगत में हम देखते हैं कि लोग हमेशा विपत्तियों से दूर रहने के लिए बहुत कष्ट करते हैं, लेकिन जितना भी वो कष्ट क्यों ना करें, विपत्तियां आती रहेंगी, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए इन विपत्तियों को सहन करने के लिए हमें सीखना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप कह रहे हो कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, और ये सब शारीरिक संबंध हैं, ये सब मिथ्या है, झूठ है, ये सत्य नहीं है, ये सब संबंध जो हैं ये क्षणिक हैं, इसलिए हमें हमारे सगे संबंधियों की मृत्यु के समय हमें शोक नहीं करना चाहिए, परंतु हे कृष्ण, मैंने आज तक शरीर शारीरिक बुद्धि से देखा है और इनको इस शरीर में इस रूप में ही देखा है, इनसे प्रेम किया है, बात किया है, उनके साथ में मैंने खाया पिया है, तो ये कैसे संभव है कि इनके मृत्यु के समय मैं विचलित नहीं होऊंगा? तो कृष्ण भगवान उत्तर देते, हाँ सही है अर्जुन, क्योंकि तुम शारीरिक बुद्धि में हो इसलिए दुख होगा, इसलिए उपाय एक ही है, उपाय है सहन करो। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाई नव नित्या ताम स्थिति क्षस्व भारत। अर्जुन अगर तुम शारीरिक बुद्धि से बाहर नहीं जा पाते हो, आत्मा के स्तर में स्थित नहीं हो सकते, इन संसार के संबंधियों को अभी भी सत्य समझते हो तो ठीक है, जब ये संबंध टूट जाएंगे मृत्यु की वजह से या और किसी कारण से तो उस समय तुम्हें दुख होगा, लेकिन सहनशील बनो, सहन करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से विपत्तियां जो आएंगी हमारे जीवन में उनको सहन करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे भी कई लोग हैं जो बहुत प्रयास करते हैं कि हमारी सुविधाजनक स्थिति जो है वो हमेशा के लिए बनी रहे। सोचते हैं अब हमारा जीवन ठीक चल रहा है, व्यवसाय भी ठीक है, कुटुंब में भी सब कुछ ठीक है, बच्चे हमारी बात मानते हैं, पत्नी भी मीठे शब्द बोलती है हमारे साथ में, और हमारे समाज में प्रतिष्ठा है, सब ठीक ठाक है, ऐसे ही रहेंगे, भगवान की जाने की बात क्या जरूरत है, नहीं जाएंगे भगवान के पास। तब प्रभुपाद इस बात की टीका करते हैं, वो कहते हैं कि जो लोग ऐसे सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वो नहीं जानते कि कितने साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, अंत में क्या होने वाला है, मृत्यु आएगी, और मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद अगर हमने ऐसे कर्मों की वजह से एक पशु की चेतना बना दी है, मनुष्य देह प्राप्त करके हमें भगवान की भक्ति नहीं की है, तो फिर हमारे इस वृत्ति की वजह से हमें एक पशु का शरीर धारण करना होगा, तो फिर ऐसे एक बहुत आराम की परिस्थिति का क्या मतलब, क्या फायदा, लोग इसको इसके बारे में सोचते नहीं है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, चलने दो चलने दो, आंख बंद करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होना है, मृत्यु होनी है, और मृत्यु के बाद कौन सी गति होनी है हमारी, लेकिन नहीं, उनको मृत्यु के बाद क्या होगा उसके बारे में सोचना नहीं है। किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, जब तक चल रहा है खाओ पियो मौज करो। लेकिन कुंती महारानी ऐसी दर्शन को स्वीकार नहीं करती है, वो अच्छी तरह से जानती हैं कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना है, और कुंती महारानी को पुनर्जन्म नहीं चाहिए, बहुत बुद्धिमान है कुंती महारानी, और इसलिए चाहती हैं कि कष्ट आए, अभी असुविधाएं हों तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा कष्ट आने दीजिए, ताकि और भी तीव्रता से मैं आपका स्मरण कर सकूं, जिससे कि मुझे पुनर्जन्म न मिले और मुझे पुनर्भव दर्शन न करना पड़े। तो कुंती महारानी की यही प्रार्थना है, हमें भी कुंती महारानी के पद चिन्हों में चलना चाहिए, हमें भी बहुत तीव्रता से भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ये जानते हुए अच्छी तरह से कि मृत्यु आएगी और हमारे जो आराम की स्थिति है वो नष्ट हो जाएगी। कभी कभी भक्ति करते करते भी हर एक भक्त के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, ये एक समय आता है कि वो थोड़ा ढीला हो जाता है आध्यात्मिक जीवन में, अपने माला के लिए ठीक है करेंगे, थोड़ा किसी ने आराम से करेगा, पहले तो एकदम बिल्कुल सतर्क रह के करता था अच्छी तरह से, फिर थोड़ा धीरे 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 ढीला होता जाएगा, फिर जब करते टाइम बातचीत चालू होगी, फिर ये फिर वो बातचीत, फिर जब करते थोड़ा अखबार उठाएगा देखेगा, तो ढीले धीरे ऐसे ढीलापन आ जाता है, फिर सत्संग, अरे ठीक है अभी सब सत्संग में जाना थोड़ी जरूरी है, एक दो में जाएंगे अपनी हाजिरी देकर आ जाएंगे, तो धीरे 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 से जो है उसका आकर्षण संसार के प्रति आ जाता है, और फिर भगवान को भूलने लगता है, और फिर वो व्यक्ति भक्ति में ढीला होकर शायद माया के पास भी जा सकता है। अगर वो भाग्यशाली है तो थोड़े कम समय के लिए ढीला रहेगा, फिर से भक्त उसको खींच के लाएंगे। तो भक्तों को चाहिए कि वो हमेशा बहुत सतर्क रहें, ढीले ना बन जाएं, अपने भक्ति मार्ग में अच्छी तरह से प्रगति करते रहिए, जानते हुए कि अगर हम नहीं करेंगे पुनर्जन्म होना है, फिर से वो बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट हमको सहन करना है। तो जो व्यक्ति कष्ट से दूर होना चाहता है, जो व्यक्ति ऐसे बारंबार जन्म की पीड़ा को सहन नहीं करना चाहता है उसको तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कुंती महारानी क्योंकि अच्छी तरह से जानती हैं, तो इसी प्रकार से वो यहां प्रार्थना करती हैं कि भगवान आने दीजिए कष्ट, जितने से ज्यादा से ज्यादा कष्ट हैं यहां पर वो आए, तो कष्टों के समय में आपका दर्शन करूं और फिर मैं आपके धाम में वापस आ जाऊंगी। पांडवों के जीवन में, कुंती महारानी के जीवन में शुरुआत से अंत तक कितने सारे कठिनाइयां आईं, और इन सारे विपत्तियों में श्री कृष्ण उनके साथ में ही थे। जब भीष्म देव तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय उन अंतिम क्षणों में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों को वहां पर उनके पास में लेकर गए, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि भीष्मदेव का जो भीष्मदेव की मृत्यु जो है वो एक आदर्श मृत्यु हो जाए। कृष्ण भगवान भीष्मदेव के ऊपर असीम कृपा करना चाहते थे। भीष्मदेव की मृत्यु के समय वो भीष्म के आंखों के सामने उपस्थित होना चाहते थे, परिपूर्ण मृत्यु, और भीष्मदेव का गौरव वो कराना चाहते थे, भीष्मदेव का गुणगान कराना चाहते थे और भीष्मदेव के माध्यम से युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिलाना चाहते थे। तो जब वहां पर ये सभी एकत्र हुए तो भीष्मदेव ने जब युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों को देखा तो वो शोक करने लगे कि हाय हाय, देखो क्या परिस्थिति है, कहां तुम युधिष्ठिर, साक्षात धर्मराज हो तुम, तुमने कोई बुरा काम नहीं किया, हमेशा धर्म का पालन किया, कभी भी पाप नहीं किया, और यहां अर्जुन और भीम न केवल इतने शूर वीर योद्धा परंतु इतने भगवान कृष्ण के परम भक्त, यहां पर द्रौपदी देवी साक्षात लक्ष्मी के रूप, जहां द्रौपदी देवी हैं वहां पर कोई अनाज की कमी नहीं, आप अक्षय पात्र की कहानी जानते हैं ना, तो जहां द्रौपदी देवी है वहां किसी चीज का अभाव नहीं हो सकता, लेकिन और इसके साथ साथ स्वयं भगवान कृष्ण आप सबके साथ हमेशा रहे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में इतने कठिनाइयां आई कि इनका वर्णन हम नहीं कर सकते। और भीष्मदेव अपने अंतिम क्षणों में इन चीजों को कह के, इन चीजों के बारे में स्मरण करके वो रोने लगे। इतने शूर वीर महारथी भीष्मदेव, जिनका युद्ध में कोई भी सामना नहीं कर सकता था, अब वो पांडवों के, कुंती महारानी के कठिनाइयों के बारे में सोचकर इतने दुखी हुए कि रोने लग गए, और फिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं, वो हमारे समझ के बाहर है। हालांकि कृष्ण सामने खड़े हैं, कह रहे भगवान कृष्ण की योजनाएं हमारे चिंतन के बाहर है, भगवान की योजनाओं को कोई नहीं समझ सकता है, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि भक्त बनने के बाद हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। कई बार लोग भक्त बन जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे भक्त बनने के बाद भी इतना दुख हो रहा है तो फिर भक्ति क्यों करें, भक्ति को छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए पांडवों के जीवन में इतना दुख हुआ, तथा कथित दुख, प्रहलाद महाराज के जीवन में, हरिदास ठाकुर के जीवन में इतने सारे विपत्तियां आईं, उन्होंने कभी भक्ति को छोड़ा नहीं, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय छोड़ा नहीं, बल्कि और तीव्रता से वो श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने ऐसे महान भक्तों को कठिनाई में कभी कभी इसलिए डालते हैं कि हम जैसे भक्तों के लिए ये एक आदर्श, एक उदाहरण प्रस्तुत हो, ताकि हम जान सके कि हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं तो हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे विपत्तियों को कृष्ण समझकर स्वीकार करना चाहिए, खुशी से स्वीकार करना चाहिए। और जैसे कुंती महारानी यहां पर स्वागत कर रही हैं विपत्तियों को, वैसे हमें इन विपत्तियों को स्वागत करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। जहां तक साधारण हम प्रयत्न कर सकते हैं प्रयत्न करना चाहिए, परंतु एक सीमा के बाहर हमें जानना चाहिए कि इससे ज्यादा हमें नहीं करना है परिश्रम, इससे ज्यादा भगवान के हाथ में। और अगर इसके बाद भी भगवान कुछ कष्ट देना चाहते हैं हमारे जीवन में, तो फिर यही कृष्ण है। ये समझकर हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ये श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा की है, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति, कि हे अर्जुन बेटा है ये मेरा, कानों में हाथ रखते थे, विश्व नाश नहीं होगा। तो भगवान ने ये अर्जुन को क्यों कहा जाके कहने के लिए, खुद क्यों नहीं कहा भगवान ने? क्योंकि कभी कभी अपने भक्तों के प्रेम की वजह से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं और उनके भक्त भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो इस प्रेम की वजह से कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने ही वचनों को तोड़ने के लिए बद्ध हो जाते हैं। जैसे कि उन्होंने जो वचन लिया था कि युद्ध भूमि पर मैं अस्त्र कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन को अपने प्रिय भक्त को बचाने के लिए और भीष्म देव जो भी उनके भक्त हैं उनके वचन को बनाए रखने के लिए भगवान ने अपने वचन को तोड़ दिया। भीष्म देव ने वचन दिया था कि मैं श्री कृष्ण को उनके वचन को तोड़वाने में मजबूर करूंगा, और यहां पर अर्जुन की भी रक्षा करनी थी, तो दोनों का समन्वय कैसे किया जाए? इसलिए श्री कृष्ण के लिए एक ही रास्ता रहा कि मुझे मेरा वचन तोड़ना है। तो श्री कृष्ण ने रथ की जो चक्की है वो उठा दी और भीष्म देव के प्रति आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो भीष्म देव ने अपने अस्त्र छोड़ दिए, बस भगवान के सुंदर दृश्य को देखते रह गए, और मृत्यु के समय भी वो इसी दृश्य का स्मरण कर रहे थे कि किस तरह श्री कृष्ण उनकी ओर आ रहे थे उस चक्र को धारण किए हुए अपने हाथ में। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि अर्जुन तुम घोषणा करो, तुम मेरे भक्त हो ना, तुम में ज्यादा भक्त विश्वास करते हैं, लोग विश्वास करेंगे, मुझ में इतना विश्वास नहीं करते लोग, लेकिन मेरे भक्तों में ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए तुम कहो, जाओ मेरे भक्तों का हौसला बढ़ाओ और कहो कि भक्तों को डरने के लिए कोई कारण नहीं है। भगवान ने भी गीता में कहा है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो नहीं मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तुम कहो जाओ मेरे भक्तों को कहो डरने की कोई बात नहीं, कृष्ण है बचाने के लिए। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि संकट से विपत्तियों से कभी भी डरे नहीं, बल्कि विपत्तियों को भगवान का ही एक रूप समझकर अपने जीवन में स्वागत करें। कुंती महारानी इसलिए विपत्तियों का स्वागत कर रही हैं बारंबार, क्योंकि वो अभी निपुण हो गई हैं कि भगवान का स्मरण करें ऐसे संकट की अवस्था में। तो हमें भी प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जब कष्ट आएंगे तो शिकायत करने के बजाय, रोने के बजाय कृष्ण को देखना चाहिए इन विपत्तियों में। दूसरों के प्रति घृणा द्वेष करने के बजाय हमें समझना चाहिए कि ये कृष्ण की कृपा का एक प्रदर्शन है हमारे जीवन में, और ऐसा समझते हुए जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं हृद्वाग वपु भी विदधन नमस्ते, ऐसे संकटों को ऐसे विपत्तियों में से चलते हुए उनका सामना करते हुए सहन करते हुए हमारे हृदय से, हमारे वचनों से, हमारे शरीर से, हमारे कार्यों से हमें भगवान श्री कृष्ण का नमन करते जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न है कि कौन ज्यादा भाग्यशाली था, वो सुल्तान या रामदास? इन दोनों में से भगवान किसके ऊपर ज्यादा कृपालु थे, आप बताइए? रामदास के ऊपर। हालांकि उन्होंने दर्शन दिया सुल्तान को, उस यादव आर्य के लीला में उन्होंने दर्शन दिया डकैत को, लेकिन फिर भी भाग्यशाली कौन है? यादव आर्य भाग्यशाली थे, रामदास भाग्यशाली थे। क्यों? पहली बात, ये जो डकैत थे या ये जो सुल्तान था, इस दर्शन का महत्व नहीं जानते थे, वो क्या देख रहे हैं पूरी तरह से उनको ये समझ नहीं थी। इसका मतलब है कि भगवान का दर्शन होना केवल यही एक भगवान की कृपा का लक्षण नहीं है, कभी भगवान अपने आप को दूर रखते हैं भक्त से, ये भगवान की कृपा के लक्षण हो सकते हैं। तो भगवान ने इन दोनों भक्तों की प्रेम की तीव्रता बढ़ाई उनको ऐसे संकट में डालकर, और हम जैसे भक्तों को उन्होंने प्रेरणा दी इन लीलाओं के माध्यम से कि हमें कैसे समझना चाहिए कि संकट में हमें क्या करना है। अपने भक्तों के माध्यम से भक्त सारे संसार को उपदेश देना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे विचित्र चीज कर देते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देने के बजाय मुसलमान सुल्तान को दर्शन देके आए, उनके पास गए, उनसे बात किया, उनको उनके हाथ में पैसे दिए, ऐसे नहीं कि एक क्षण के लिए दर्शन देकर ओझल हो गए, उनसे अच्छी तरह से आराम से बात किया, धन दिया उनको, चले गए। तो अवश्य रामदास के ऊपर उन्होंने ज्यादा कृपा की। इन द्वंद्वों के बीच में रहते हुए विशेष करके कठिनाइयों के समय हमें कैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, इसके लिए कोई पद्धति है, कोई टेक्निक है? हाँ, पद्धति तो कुंती महारानी बता रही है, यही पद्धति है कि हमें देखना चाहिए कि संकट या विपत्ति कृष्ण का रूप है। अपने मन को हमें समझा लेना चाहिए, यह है श्रद्धा, यह दुख है, दुख का कारण और कोई व्यक्ति नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने आकर जानबूझकर हमें कष्ट दिया है तो वो तो केवल निमित्त मात्र है, करने वाले तो भगवान है। जैसे रामदास ने समझ लिया कि पिटाई उनकी किसने की, सुल्तान ने करवाई, लेकिन वो जानते हैं कि सुल्तान तो केवल निमित्त थे, करने वाले कौन थे, भगवान थे। तो इस प्रकार से अगर हम श्रद्धा रखेंगे, ये दृष्टि रखेंगे, तो सब ठीक होगा। आध्यात्मिक जीवन एक दृष्टि की बात है, कैसे दृष्टि रखनी चाहिए हमारे जीवन में होने वाले अलग अलग घटनाओं के प्रति, तो इस दृष्टि को बनाए रखना है। और भक्तों के संग में आकर हम समझते हैं कि कैसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो तीसरा प्रश्न है कि क्या हम भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप और भी कष्ट भेजिए ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें? वैसे कर तो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबके जीवन में भरपूर है ना, तो जो है उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, इनके बीच में रहते हुए भगवान को देखना कठिन हो रहा है, तो और भी क्यों हम कष्ट मांगे जानबूझकर। हाँ, भगवान से ये मांग सकते हैं कि भगवान, जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं और आने वाले हैं, इन कष्टों को सहन करने के लिए शक्ति दीजिए, और इन विपत्तियों के समय हमें आपका स्मरण करने की बुद्धि दीजिए, हमें वो दृष्टि दीजिए कि इन विपत्तियों को, इन खतरों को हम विपत्ति या खतरा न समझकर हम इसे आपका रूप समझेंगे, आपका कृपालु रूप समझेंगे, ये दृष्टि हमें दीजिए। चाहे आप कठिनाइयां भेजना चाहें या न भेजना चाहें, हर अवस्था में हम आपका स्मरण करना चाहते हैं, सुख दुख को दोनों को आपका रूप हम देखना चाहते हैं, ये बुद्धि दृष्टि हमें दीजिए, ऐसे प्रार्थना हमें करनी है। कुंती महारानी एक बहुत महान भक्त हैं और वह हर अवस्था में भगवान को देख सकी, लेकिन हम इतने सहनशील नहीं हैं, तो हम भी उनकी तरह प्रार्थना करेंगे और कृष्ण हमारी प्रार्थना सुन ली, और हमने जो सुना है वो अगर भूल जाएं तो क्या होगा? समझ में आपको प्रश्न? प्रश्न ये है कि हमने भगवान से कुंती महारानी की तरह मांगा कि और विपत्तियां भेजते रहिए, और भगवान ने भेज दिया हमारी प्रार्थना सुनकर, और अब जो हमने प्रवचन में सुना वो हम भूल गए, फिर विपत्तियां आएंगी और उनके सामना करने के लिए वो ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो पहली बात तो ये है कि जो हमने सुना है उसको भूलना क्यों है? भूलना नहीं चाहिए, बारंबार अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए। कैसे अपने आप को याद दिला पाएंगे? भगवान श्री कृष्ण का नाम बड़े भक्ति भाव से सदैव लेकर कृष्ण कथा और सत्संग में बारंबार आकर, बारंबार हम सत्संग यही सुनते हैं कैसे हमें श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, कैसे संसार के दुख सुख दुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए, कैसे ये संसार की चीजें सब भ्रम है, सब स्वप्न है, असत्य है, केवल कृष्ण ही सत्य है। तो बारंबार जब ऐसा सुनेंगे तो फिर स्वाभाविक तौर से हमारी विचार विपत्ति के समय भी ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कुंती महारानी के हैं। तो कुंती महारानी के पद चिन्हों में पलने चलने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। जब हमारे जीवन में सारे विपत्तियां एकदम से आ जाती हैं, विपत्तियां तो एकदम से ही आने वाली हैं, बिन बुलाए, ऐसे नहीं कि विपत्ति अनाउंसमेंट देकर नोटिस देकर आने वाली है, वो तो ऐसे ही यूं ही आने वाली है। जब हमारे जीवन में सारे विपत्तियां एकदम आ जाते हैं, तब हम जानते हुए भी इन कष्टों को सहन नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, इस समय पर हमें क्या करना चाहिए? ये एक अभ्यास का प्रश्न है। जितना ज्यादा इस चीज के बारे में हम अभ्यास करते रहेंगे, उतनी ज्यादा हमारी शक्ति बढ़ेगी। और हमें जानना चाहिए कि भगवान हमारे सहनशीलता से अधिक समस्याएं हमारे जीवन में नहीं भेजेंगे। जैसे एक अध्यापक एक पांचवें कक्षा के विद्यार्थी को दसवें कक्षा की परीक्षा नहीं देगा, पांचवें कक्षा में जितने जैसे प्रश्न पूछने चाहिए वैसे ही प्रश्न पूछेगा। उसी प्रकार से भगवान भी भक्त के जीवन में ऐसे ही कष्ट भेजते हैं जिनको सहन करने के लिए हमारे अंदर शक्ति है। केवल इतना है कि हमको बहुत कोशिश करना है उसके लिए। हम बिना कोशिश किए हुए सोचेंगे कि हम सहन नहीं कर सकते, कोई ताकत नहीं लगाएंगे, कोई दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए सहन करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो भगवान हमें मदद करेंगे, इन विपत्तियों में से आराम से निकलने के लिए भगवान हमें शक्ति दे देंगे। प्रश्न का मतलब यह है कि वैसे जो भक्त होते हैं वास्तव में वो नरक भी जाने के लिए तैयार होते हैं, स्वर्ग भी जाने के लिए, गोलोक वृंदावन भी जाने के लिए, जहां भी जाने के लिए तैयार होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता नरक या स्वर्ग या कुछ भी। तो फिर यहां पर कुंती महारानी ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसा नहीं है कि भक्त गोलोक वृंदावन में नहीं जाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि जानबूझकर भक्त जन्म मृत्यु के चक्कर में अटक के रहना चाहता है। लेकिन भक्त कहता है, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे जहां भी रखिए, आप अगर मुझे नरक में भेजना चाहते हैं तैयार, यहां पर बार बार पृथ्वी लोक पर जन्म दिलवाना चाहते हैं तैयार, जो आपकी इच्छा। लेकिन अपनी भी इच्छा व्यक्त करते हैं भक्त, हम भी आपके पास आना चाहते हैं, शाश्वत रूप से आपकी सेवा करने के लिए ही गोलोक वृंदावन आना चाहते हैं, केवल कष्टों से बचने के लिए नहीं, लेकिन आपका संग लेने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए हम आपके धाम में आना चाहते हैं। तो भगवान के धाम में जाने की इच्छा ये गलत नहीं है, परंतु अगर भगवान चाहें कि हम पृथ्वी लोक में बारंबार जन्म लेते रहें, तब भगवान के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमको आना है आपके धाम में। ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है, भौतिक विपत्तियों का कारण क्या है? भाषा की विपत्ति का कारण मतलब के ऊपर, भाषा के ऊपर जो झगड़े होते हैं मराठी कन्नड़, सॉरी सॉरी, सारे झगड़ों का मूल एक ही है, मूल कारण भगवान की विस्मृति। कोई ना कोई कारण चाहिए लोगों को झगड़ा करने के लिए, कितना भी आप समाधान करने के लिए नया कारण कुछ और हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सब लोग एक भाषा बोलेंगे तो सब शांति से रहेंगे, नहीं, और कोई नया कारण आ जाएगा वो झगड़ा करने के लिए। जब तक हम तीन गुणों के प्रभाव में हैं, कोई ना कोई निमित्त बनेगा झगड़े के लिए। तो हमें चाहिए कि इन द्वंद्वों में न पड़ के हम केवल परम सत्य भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय ले लें। बस इस संसार के द्वंद्वों से, झगड़ों से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें केवल कृष्ण की भक्ति चाहिए और कृष्ण भक्तों का संग चाहिए, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, कौन सी भी भाषा वो क्यों ना बोल रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
यदि कई भक्तों से भी हमने सुना है और खुद का भी ऐसे अभी सेवा करने में भी हमारे लिए तकलीफ आ जाता है, शारीरिक प्रॉब्लम्स हो जाता है, नहीं तो मानसिक प्रॉब्लम आता है, तो ये भी एक तरह का तकलीफ, इसके कारण कई भक्तों को मंदिर भी नहीं आ पा रहा हूँ। नहीं तो कई भक्त मंदिर में है, उनका सेवा नहीं हो पा रहा है, कुछ तकलीफ है। उस समय भगवान का स्मरण कर सकते, फिर भी वो रोग ऐसे रखेंगे तो भी वो तकलीफ होता है। वो स्मरण कर सकते लेकिन क्या प्रार्थना कर सकते हैं स्मरण करते हुए, भगवान ये रोग को चले नहीं चाहिए, नहीं तो ये तकलीफ के कारण सेवा नहीं हो पा रहा, कैसे सोचना चाहिए भक्त?
हाँ, अगर हमारा शरीर साथ नहीं देता लेकिन ज्यादा से ज्यादा मन साथ नहीं देता है, शरीर ज्यादातर साथ दे भी मन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये है कि जब शरीर या कोई तबीयत की वजह से, कोई ऐसे असुविधा की वजह से हम पूरी तरह से सेवा नहीं कर पाते, मंदिर को आ नहीं पाते, या मंदिर में रहते हुए भी पूरी तरह से सेवा नहीं कर पाते, तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर आपकी सेवा में ये मेरे लिए अड़चन हो रहा हो तो कृपया ये अड़चन हटाइए ताकि मैं आपकी और भी अच्छी से सेवा कर सकूं। और अगर आपकी इच्छा है कि मैं ऐसे ही अवस्था में रहकर आपकी सेवा करूं तो फिर कबूल, मंजूर है। लेकिन साथ साथ जैसे तबीयत वगैरह की बात है, जो हमारे बस में है, जो हमारे नियंत्रण में है, एक रीजनेबल लिमिट तक, एक साधारण स्तर तक हमें करना चाहिए। उसके बाद इतना सब प्रयत्न करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो भगवान की इच्छा समझकर हमें जो जैसे परिस्थिति में भगवान ने रखा है वैसे उस परिस्थिति में हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। थोड़े हद तक तो हमें प्रयत्न करना चाहिए लेकिन उसके बाद हमें जान लेना चाहिए ये सीमा है, और भी इसके परिश्रम करते करते भी कोई इसका उपाय नहीं है, ये सब आएंगे जाएंगे, इसलिए हम कृष्ण भक्ति में ज्यादा मन लगाएंगे। क्या हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें विपत्तियों से मुक्त कर दें? हालांकि ये विपत्तियां जो हैं वो उनकी कृपा है, उनको उनको धाम में ले जा सकती हैं। कुंती महारानी तो इसकी विपरीत प्रार्थना यहां कर रही है कि विपत्तियां आने दीजिए, जितने हैं आने दीजिए, क्योंकि आपका स्मरण करते करते मुझे मालूम है कि मैं आपके धाम में चली जाऊंगी। तो इसलिए विपत्तियों को निवारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये गलत भी नहीं है, स्वाभाविक है, भक्त आगे किसके पास जाएगा? यही तो अंतर होता है भक्त में और अभक्त में। अभक्त जो है किसी दूसरी चीज का आश्रय लेते हैं, कोई दुखी होकर शराब पीने लगता है, कोई कुछ और करने लगता है, कोई आत्महत्या करता है, लेकिन भक्त कहां जा सकता है? वो तो भगवान के पास ही जाएगा। तो विपत्ति के समय अगर भक्त भगवान का आसरा ले ले, इसमें कोई ये सही है गलत है, गलत नहीं है, परंतु भक्त ये भी जानता है कि अगर भगवान चाहते हैं कि ये विपत्तियां मेरे जीवन में आते रहें तो फिर इसको उनकी इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज अब कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद
हरे कृष्णा
हरे कृष्ण।
प्रभु जी, अगर कंस के लिए उनके बहन की शादी होने के बाद में अगर आकाशवाणी नहीं होती थी कि तो उनके बहन और वासुदेव कारागृह के कष्ट से बच सकते थे, और महान वैष्णव नारद ऋषि अगर कंस को ये उल्टा सुल्टा नहीं बताते थे तो सात बच्चे बच जाते थे, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया?
क्योंकि भगवान कृष्ण क्यों आने वाले थे धरती पर, किसके बुलाने पर, किसके बुलाने पर आने वाले थे? देवताओं के बुलाने पर। देवता लोग तो ब्रह्मा जी के पास गए ना कि यहां असुरों का बोझ बहुत बढ़ गया है, फिर ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, चलो हम क्षीर सागर में जाते हैं। फिर वहां क्षीर सागर के तट में जाकर सबने पुरुष सूक्त प्रार्थना की, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने संदेश भेजा कि चिंता नहीं करो, शीघ्र ही मैं प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन मेरे आने के पहले आप सब जो हैं इस वृष्णि वंश में जाके यदुकुल में आप जन्म लेना अलग अलग कुटुंबों में, और फिर मैं आऊंगा और सारे दुष्टों का नाश करूंगा, चिंता नहीं करना। तो देवतागण बड़े आतुर थे कि शीघ्र अतिशीघ्र भगवान का अवतार हो जाए, और वो जानते थे कि यहां पर भगवान देवकी के पुत्र बनकर आने वाले हैं, और वो आठवें पुत्र बनकर आने वाले हैं, ये भी भगवान ने भविष्यवाणी की थी। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता तो भगवान के आने के लिए कोई बैकग्राउंड बनता ही नहीं। फिर भगवान सोचते ठीक है, जब और कष्ट बढ़ेगा तब मैं आऊंगा, फिर दुष्टों का नाश नहीं होगा, दुष्टों का राज चलता रहेगा और सारे पृथ्वी में कष्ट बढ़ेगा। इसलिए उनको चाहिए था कि जल्दी से जल्दी जो होना है वो हो जाए, ताकि भगवान कृष्ण जल्दी से आए, कंस का नाश करें, सारे असुरों का वध करें, फिर सारे समाज में शांति हो जाएगी। तो नारद मुनि तो परम भक्त हैं भगवान के, वो किसी की बुराई भला क्यों चाहे, नहीं चाहते हम भलाई, लेकिन वो केवल भगवान के अवतीर्ण को जल्दी कराना चाहते हैं, जल्दी से भगवान अवतार ले लें ताकि दुष्टों का नाश जल्दी हो जाए, इसलिए ऐसे हुआ। पांडवों को उन शूद्राणी और उनके पांच पुत्रों को बुलाकर मारना ये क्या उचित था उनके लिए? वो अपने आप आए, शराब के नशे में आए, सो गए, दावत उनको दे दिया। और इसके पीछे इसका और कोई रहस्य नहीं है, तो अपनी इच्छा से वो लोग आए वहां पर रहे। और वैसे भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये नित्य पार्षद हैं, तो उनके हाथों से जो भी होता है उनका उद्धार हो गया है, इन छह लोगों का, वो शूद्राणी और उसके पांच पुत्रों का उद्धार हो गया, क्योंकि कम से कम उनका जीवन कुछ तो काम का आया, भक्तों की सेवा में लगे थे, उनका शरीर कुछ तो हुआ, भला हो गया उनका वास्तव में।
हरे कृष्ण। तो ये आपने बताया कि हमको एडवांसमेंट पता चलता है कि जैसे भक्ति में आसक्ति हो, लेकिन हम देखते हैं कि किसी भक्त मतलब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में आसक्ति लगाते हैं, किसी कोई चीज कोई कोई अन्य भक्ति करना चाहते हैं, मतलब अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग से भक्ति करना चाहते हैं, आसक्ति तो डिफरेंट विषय पर रहते हैं, जैसे डीटी वर्शिप, प्रीचिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको कैसे समझना चाहिए?
प्रश्न है कि भक्ति के अलग अलग अंगों के प्रति अलग अलग भक्तों की आसक्ति हो सकती है, तो हम इससे कैसे जान सकते हैं कि कौन वास्तव में आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया? ठीक है, किसी को तरह तरह की सेवाओं में आसक्ति हो सकती है, लेकिन अंततः गुणों में फर्क पड़ना चाहिए, हमारी शरणागति में फर्क पड़ना चाहिए, कितने प्रगति कर चुके हैं, हमारे गुणों में कितना परिवर्तन हुआ है, स्वभाव में कितना परिवर्तन हुआ है,